पेज नंबर 131। अग्रहायण की एकादशी का अंतिम प्रहर है, कपि श्रेष्ठ इसी में उल्लूकाभिसार कर रहा है। रात रहते रहते कोई फाँक कोई दराज खोज लेनी है, जिससे रहस्य के भीतर झांका जा सके। मरुदगण मेरे अंग अंग की रक्षा करें, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं वहाँ पिता प्रवेश कर जाते हैं, वे पिता मेरी रक्षा करें। ऐसा मन ही मन कहते मारुत नंदन हनुमान रावण की पान भूमि और विहार भूमि के मध्य प्रवेश कर जाते हैं। आधी रात कब की ढल चुकी है, चारों ओर मर्दित शोभा अवश निद्रा और उच्छिष्ट गंध है। वाल्मीकि की कविता यहाँ पर पढ़ते हुए इलियट का वेस्टलैंड याद आ जाता है। विशेषतया द्वितीय भाग में वर्णित किसी वीरांगना के श्रृंगार कक्ष का रतिगंधी चित्र। वह दर्पण के सम्मुख बैठी है, सम्मुख मखमली केसों में रखे गए रत्न जटित आभूषण झलमला रहे हैं। उसके हीरे के टॉप्स और उसकी स्वर्ण कुंतल राशि रोशनी में अपूर्व आभामय हो उठे हैं। सामने प्रसाधन सामग्री है, गंध पर गंध, आभा पर आभा, एक उत्कट मद विह्वलता, एक उत्कट रति निमंत्रण चारों ओर व्याप्त है। शीतकालीन अग्निकुंड भी ले लिप्यमान रति यज्ञ की तरह तमक रहा है, और उसके मेंटेल पीस के ऊपर ग्रीक आरण्य कथाओं का अंकन है। टीरियस फिलामेला के साथ बलात्कार करते हुए, बलात्कार के बाद टीरियस ने फिलामेला की जिह्वा काट ली। उसका जन्म हुआ बुलबुल के रूप में, वह सारी धरती को अपनी फरियाद सुनाती है। उसकी बलात्कार की करुण चीख हम बाग बाग में सुनते हैं, फिर भी निरंतर बलात्कार में हम तल्लीन हैं, निरंतर रति क्रिया में लीन हैं। धरती का कामम अग्रत हमारे बलात्कार से कलित विषाक्त तो हो चुका है। आज धरती बंध्या है, ऊसर है, मृत प्रसवा है, क्योंकि रति क्रिया आज अग्नि भक्षण बन चुकी है। यह प्राण स्वास्थ्य और अमृत का स्रोत नहीं रही। इलियट का सारा वेस्टलैंड इसी आत्मधिक्कार, इसी वितृष्णा, इसी वंध्यारति की आत्मिक ग्लानि का चित्र देता है। वाल्मीकि द्वारा रावण के अंतःपुर के अंतिम चित्र को पढ़ते समय वितृष्णा, उच्छिष्टता और निरर्थक रति क्रिया के प्रति वैसा ही आत्मधिक्कार मन उठता है। वाल्मीकि का कैनवास बहुत बड़ा है, उसमें यही नहीं और बहुत सी बातें। यह सही है, पर घर्षित शोभा और वितृष्णा के काव्य के हिसाब से यह अंश अति की मूल संप्रज्ञात होता है, और वेस्टलैंड के संस्कारों के माध्यम से ये मूल और अधिक अर्थमय तथा स्पष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार नवलेखन और नए साहित्य द्वारा प्राचीन जो जड़ नहीं हो चुका है नया प्राण और संस्कार पाता है, इस तथ्य का कुछ कुछ अनुभव यहाँ पर हो जाता है। नवीन को प्राचीन आधार देता है और बदले में नवीन से पुनः संस्कार या कायाकल्प पाता है। मारुति देखता है कि रावण के अंतःपुर में श्रृंगार लीला से थककर या पान भक्षण से बेसुध हो जो जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहा। चारों ओर मौन उदासी श्रीहीनता और वमिषा अर्थात उबकाई का वातावरण है, और इस सारे दृश्य को एकटक एकमात्र देखने वाले हैं जलते हुए दीपक, जो हारे हुए धूर्त जुआरियों की तरह एक पात में चुपचाप बैठे हैं, सिर पर हाथ दे। जलते दीपक को छोड़कर शेष सभी अस्त व्यस्त मर्दित खर्षित सुप्त अवश्य हैं। रौंदी लताओं की तरह वाहिता किशोरी घोड़ियों जैसी श्रांत अवश्य सुप्त प्रमादाएं इधर उधर चित्तपट उत्तान करवट बेखबर सोई है। कोई वीणा को कसकर आलिंगन में बांधे है, कोई मदपान से बेशुद्ध मृदंग को ही कामातुर भाव से दबाए है, कोई अन्य प्रमदा को ही प्रेमी मानकर लिपटी हुई है। चारों ओर घोर रमण तृषा, घोर उत्कट देहगंध और रति मर्दित उच्छिष्ट। श्री संध्या काल में जो कुछ लक्ष्मी की छवि श्री जैसा मनोहर था, वह सब कुछ कुसरी विसरी हो चुका है। कपि श्रेष्ठ के ब्रह्मचारी चित्त में बड़ी वितृष्णा हुई। उन्हें संतोष भी हुआ कि अन्य नरों की भांति, कूकर सूकर की भांति, उन्होंने इस उच्छिष्ट अपावन भोग को अपने शरीर में कभी नहीं लपेटा और निरंतर ब्रह्मचर्य का अमृत पीकर जांघों पर ताल ठोक कर विचरण करते रहे। सुप्त मांस की विशाल राशि की तरह पलंग पर पड़ा था, उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि डालते हुए बाहर निकल गए। रास्ते में सारी पान भूमि जूठे बर्तनों, भृंगारों, करकों, मृद भांडों, उल्टी सुराइयों से भरी पड़ी थी। कहीं मांस की ठेरियां, कहीं फल मूल, कहीं व्यंजनों की राशि, तो कहीं कहीं लबालब भरे मदिरा के घट अब भी पड़े थे। दही और मसालों की गंध से तथा मदिरा के उत्कट वाष्प से उनका माथा भन्ना गया। वे बाहर निकल आए। पूर्व दिशा में लालिमा के आशार अभी प्रकट नहीं हुए हैं, पर रात्रि एक खड़ी शेष है। चुहचुहिया बोलने लगी है। मारुति एक प्राचीर पर बैठकर ताजी स्वच्छ हवा से घ्राण शुद्ध कर रहे हैं। रात के झड़ते बकुल और परिजात की कंध से संपर्कत हवा उन्हें बार बार इशारा कर रही है एक दिशा विशेष की ओर। यह सुगंध उन्हें वैसे ही रावण के अशोक वाटिका की ओर खींच रही है जैसे कोई बहन उत्कंठा से भाई को पत्र लिख लिख कर बुलाती है। अशोक वाटिका का ख्याल आते ही महाकवि के असीम धीर गंभीर हृदय में नई आशा का संचार हो गया। वे मन ही मन विश्वात्मा ईश्वर और विश्व मन की उदात शक्तियों से प्रार्थना करने लगे कि उस उन्नत नाशिका कुंद श्वेत दंत पंक्ति, व्रणहीन स्निग्ध मुखमंडल, पद्म पलाश लोचन एवं निर्मल चंद्रोपम अंग कांति वाली आर्या भगवती मैथिली के दर्शन पा जाएं, जो कहीं पर यहीं पिंजरबद्ध सारिका से छटपटा रही। तदुन्नशम पांडुर दंतम व्रणम सुस्मितम पद्म पलाश लोचनम द्रक्षे तदार्या वदनम कादान्वहम प्रसन्न ताराधिप तुल्य दर्शनम।